मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 31 मई 2017 है, मई का आखिरी दिन, और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के लिए जो मैंने विषय चुना है, इनफैक्ट यह विषय हालांकि थोड़ा सा भावना से जुड़ा हुआ है, आप यूं भी कह सकते हैं कि थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी से भी यह जुड़ा हुआ है, लेकिन इनफैक्ट यह न तो पूरी तरह से इमोशन है और न ही पूरी तरह से यह आध्यात्मिक ही है, बल्कि मुझे तो लगता है कि नहीं, इसका कहीं न कहीं संबंध रियलिटी से है, यथार्थ से है। और जो मैं यथार्थ की बात कह रहा हूं तो मेरे कहने का मतलब है कि इसका संबंध मनोविज्ञान से है। और दोस्तों आज मैं बात करना चाह रहा हूं आप सबसे आस्था के ऊपर, जिसे हम इंग्लिश में फेथ भी कह देते हैं। ये विश्वास नहीं है, याद रखिए, ये आस्था है। आस्था और विश्वास में फर्क होता है। विश्वास तो वो है कि आपको मेरी बात पर यकीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आस्था तो एक कुछ इस तरह की भावना होती है जिसमें रैशनलिटी ज्यादा नहीं रह जाती। अगर आप रैशनल तरीके से आस्था के बारे में विचार करेंगे, प्रूफ करवाने की कोशिश करेंगे, तो फ्रेंड्स वो क्षमता मेरे पास भी नहीं है इनफैक्ट। लेकिन चूंकि इसका एक बड़ा जबरदस्त मनोवैज्ञानिक पक्ष है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, साइकोलॉजिकल या रियलिटी भी है, तो मुझे लगा कि नहीं, इस विषय पर भी बात की जानी चाहिए। तो मित्रों आइए हम इस पर थोड़ी सी बातें करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा कि तीन तलाक और हलाला मामले में बहस चल रही थी, और उस बहस के दौरान जो बार बार बात कही जा रही थी तीन तलाक के पक्ष में, वो यही थी कि ये आस्था का सवाल है। इस पर मुस्लिम धर्म की आस्था है, मुस्लिम समाज की आस्था है, बल्कि यहां तक भी प्ली दिया गया कि भाई राम अयोध्या में ही पैदा हुए थे, इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो है नहीं, लेकिन चूंकि वो आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है तो उस स्थान को लोग राम की जन्मभूमि के रूप में मानते हैं, तो वहां भी आस्था की बात कही गई। तो इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी सी आस्था को जीवन में हम कैसे अप्लाई करें और कैसे इस खरे सिक्के का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बना सकें, ये क्या है, थोड़ी सी इस पर एक बार तो बात की ही जानी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली आस्था क्या है? है, नहीं है, ये सब हमारे अपने अपने अनुभवों की बात है। अगर आप अनुभव कर सकते हैं तो है, और अनुभव नहीं कर सकते तो ये नहीं है। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा एक छोटी सी घटना के माध्यम से, देखिए शायद इसमें मेरी बात मैं स्पष्ट रूप से आपके सामने रख सकूं। जैसे फ्रेंड्स एक 4-5 साल का छोटा सा बच्चा है और वह अपने पिता के साथ जंगल में जा रहा है, राइट। उसने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी है, राइट। तो बच्चे ने, बेटे ने पिता की उंगली पकड़ रखी है और वो जंगल में जा रहे हैं, और घनघोर जंगल है, जंगल में अंधेरा सा भी हो रहा है, मतलब घना जंगल है आप समझ लीजिए, और शेरों की दहाड़ सुनाई पड़ रही है, शेर दहाड़ रहे हैं। अब जब शेर दहाड़ रहे हैं तो पिता तो समझ गया कि भैया ये शेर की दहाड़ है, कहीं ऐसा न हो कि आसपास ही शेर हो और वो हम लोगों को देख ले और इसके बाद हमारा काम तमाम कर दे। तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं, चेहरे में घबराहट हो गई है, अब वो उपाय सोचने लगा है कि क्या किया जाए, मतलब उसके अंदर डर व्याप्त हो गया है, भय आ गया है। लेकिन ये जो बच्चा है 5 साल का, ये शेर की दहाड़ सुनकर बड़ा खुश हो रहा है। जब शेर दहाड़ता है तो ये भी उसकी नकल कर रहा है, मतलब वह शेर की दहाड़ का आनंद ले रहा है, उसको उसमें कोई शंख गर्जना सुनाई पड़ रही है, वो उसको एंजॉय कर रहा है। अब देखिए कि आप कह सकते हैं कि उसको नहीं मालूम है कि ये गर्जना किसकी है, शेर क्या होता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, ये बात आप लॉजिकली कह सकते हैं, और लॉजिकली आपकी बात सही भी होगी, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसमें मुझे एक और भी जो बड़ी बात दिखाई दे रही है, जिसको मैं पर्सनली दोस्तों आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं, और वो ये कि एक बहुत बड़ी बात यह है कि बच्चे ने, उस 5 साल के बच्चे ने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी है, और उस उंगली पर उसको इतना भरोसा है, उसकी इतनी जबरदस्त आस्था अपने पिता की शक्ति पर है कि उसको लगता है कि मुझे डरने की क्या जरूरत है, जो होगा जब होगा उसको संभालने के लिए मेरे पिता हैं। तो अब वह भय मुक्त हो चुका है, और सच पूछे तो अगर उसे पता भी लग जाए कि यह शेर है और बड़ा खतरनाक जानवर होता है, तब भी वो अपने पिता जितना नहीं डरेगा, क्योंकि पिता को तो यह है कि भैया मुझे बचाने वाला कौन है, कोई नहीं है। अगर उसकी ईश्वर पर आस्था है तो थोड़ी देर के लिए सोच लेगा, लेकिन बच्चे के पास एक बहुत जबरदस्त सुरक्षा कवच मौजूद है और वह है उसके पिता की उंगली। अब वो बहुत अब उसको बता भी दें कि भैया शेर आ जाएगा तो देखो तुम्हारे पिता कुछ नहीं कर पाएंगे, शेर बड़ा खतरनाक जानवर होता है, बहुत ही शक्तिशाली जानवर होता है, लेकिन वो आसानी से बात मानेगा नहीं, और अगर बात सुन भी लेगा मान भी लेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने पिता की शक्ति पर भरोसा भी करेगा। तो दोस्तों अब इसका प्रभाव क्या होगा? प्रभाव ये होगा कि उस वन यात्रा को, जंगल में जो दोनों यात्रा कर रहे हैं, बच्चा चूंकि अपने पिता की उंगली थामे हुए है तो वो उसे आनंद में परिवर्तित कर देगा, उस यात्रा का आनंद वह ले सकेगा जबकि अब पिता नहीं ले सकेगा। लेकिन यदि पिता की भी आस्था किसी पर है, जिसे हम परम पिता कह लीजिए, उस पिता की आस्था परम पिता पर है, तो देखिए अब परम पिता आकर के बचाएंगे नहीं बचाएंगे, क्या करेंगे हम नहीं जानते हैं। सच पूछिए तो कोई घटना घट जाए तो बच भी सकते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ईश्वर की कृपा है, जाको राखे साइयां मार सके न कोई, इस तरह की बातें भी हम करते हैं, और हो सकता है कि कुछ ना हो और शेर आए और दोनों को खा जाए, वी डोंट नो व्हाट क्या होगा, हम नहीं जानते। लेकिन एक बात तो निश्चित है फ्रेंड्स कि अगर उस पिता की भी आस्था किसी परम पिता पर है तो ये मान करके चलिए कि भय कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगा। अभी जो पैर कांप रहे हैं पूरी तरह से, चेहरा पसीना पसीना हो गया है, उन सब में कुछ कमी तो जरूर आ जाएगी, और ये जो कुछ कमी है ये क्या करेगी? भय का कम होना कहीं ना कहीं शक्ति को बढ़ा देना है। अगर भय कम हो गया तो आपकी शक्ति बढ़ गई, क्योंकि इस भय ने आपकी शक्ति के गर्दन को दबोच रखा था, अब ऊर्जा उन्मुक्त हो रही है ना, विमोचित हो रही है, खुल रही है, तो आप थोड़े से शक्तिशाली हो जाएंगे, यानी कि आपके पास शक्ति आ रही है, शारीरिक शक्ति भी आ रही है और मानसिक शक्ति भी आ रही है। जब शारीरिक शक्ति आ रही है तो आप अपनी चाल बढ़ा सकते हैं, कहीं छुपने के लिए जा सकते हैं, और अगर मानसिक शक्ति भी आ रही है जो आएगी ही, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं, तो बट नेचुरल है कि आप उपाय सोच सकते हैं कि क्या उपाय किया जाए, क्या कहीं छुप जाएं, पेड़ पर चढ़ जाएं, लेट जाएं, जो भी उपाय उनको ठीक लगे वो उपाय सोचेंगे, यानी कि शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति दोनों पुनर्जीवित हो उठेंगी, और धीरे 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 जब आपके दिमाग में उपाय आने लगेंगे, जब आपके शरीर में ऊर्जा आने लगेगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और फिर पता लगा कि यही कॉन्फिडेंस आपकी सुरक्षा का कारण बन गया, इसी ने आपको बचा लिया। जब आप बच गए तो अब क्या होगा? जब आप बच गए तो ये जो पिता है इसकी आस्था भगवान पर हो जाएगी, परम पिता पर हो जाएगी कि हाँ देखो उस भगवान की कृपा थी, हम इस मुसीबत से भी बहुत अच्छे तरीके से बच करके निकल गए, उसका आशीर्वाद था। बच्चे को भी हो जाएगा कि देखो मैंने सोचा था ना कि पिता की उंगली पकड़े हुए हूं मैं, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम सब ठीक रहेंगे, और मेरे पिता ने मुझे बचा लिया, तो दोनों के पिता ने दोनों को बचा लिया। तो मित्रों यही है आस्था, मुझे लगता है कि ये आस्था जिंदगी में होनी चाहिए, फिर चाहे वो जिस पर भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान पर ही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी देव स्थल पर ही हो, मंदिर मस्जिद पर हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी एक पर्टिकुलर किताब पर ही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी गुरु पर ही हो, किसी पर भी आस्था हो सकती है। जिस पर भी आप खिलाड़ियों को देखिए तो पता लगा बड़े विचित्र विचित्र तरह के वो टोटके पाले रहते हैं, मैं तो कहीं ना कहीं उन टोटकों को भी आस्था से जोड़कर देखता हूं कि साहब मैं अगर अपनी कलाई पर काले रंग का धागा बांधूंगा तभी मैं मैच जीत सकता हूं, मैं मैच के दौरान इसी कलर की जर्सी पहनूंगा या ये करूंगा, या घर में से निकलने से पहले दही चाटूंगा, शहद चाटूंगा, जो भी है। ये कुछ कमाल करते हैं नहीं करते हैं अब इसको वैज्ञानिक समझेंगे, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर तो फ्रेंड्स ये कमाल होता है। लेकिन यहां एक खतरा है, मैं थोड़ा वो खतरा भी बता दूं आप लोगों को, जो क्योंकि मैंने इन खतरों के शिकार होते हुए लोगों को देखा है, दोस्तों, जैसे कि अक्सर मुझे अपने गांव का तालाब याद आता है, हमारे गांव में एक तालाब था और उस तालाब के बीचों बीच एक खंभा सा था, अच्छा मोटा सा खंभा गड़ा रहता था तालाब से। तो अब मैं बता नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उस खंभे से गांव वाले अंदाजा लगाते होंगे कि इस तालाब में अभी कितना पानी है, मुझे मतलब अनुमान है मेरा। तो वो खंभा हुआ करता था। तो मित्रों, ये खंभे का दृश्य मुझे याद आता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं तालाब में डूब रहा हूं, तो वो खंभा मेरी आस्था है, मुझे लगेगा कि तालाब में उतरने से पहले कि अगर मैं डूबने लगूंगा तो वहां एक खंभा है, और यदि मैं किसी तरह से खंभे तक पहुंच गया तो उसको जोर से पकड़ लूंगा, फिर मैं डूबने से बच जाऊंगा। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन पता लगा कि मैं जब डूब रहा हूं और सोच रहा हूं कि खंभा मुझे बचा लेगा, तो और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि खंभा मेरे पास चल कर आए, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है। या फिर दूसरी मुसीबत ये है कि मैं खंभे को पकड़ करके वहीं खड़ा रहूं और मैं ये भूल जाऊं कि भैया ये जो खंभे हैं ये पकड़कर खड़े रहने के लिए नहीं होते हैं, जरूरत पड़ने पर पकड़ने के लिए होते हैं। ये इसलिए नहीं बने हैं कि इनको पकड़ करके और अब हम खड़े रहें। आस्था के साथ कभी कभी मुझे इस तरह के खतरनाक चीजें दिखाई देती हैं कि अब जो भी करेगा वो करेगा, हमें कुछ नहीं करना है। हमारी तो आस्था है, अगर उसको हमारी जरूरत नहीं है, वो अपनी आस्था को तोड़ना चाहता है, कम करना चाहता है, तो उसके ऊपर है, ठीक है। वो ना आए हमें बचाने के लिए, हमारी रक्षा ना करे, हमारी ना सुने, हमारे रिजल्ट्स ना दे जो हम चाहते हैं, जो मांग रहे हैं, ठीक है, हम आस्था करना छोड़ देंगे। और ऐसे लोग करते क्या है मालूम है, आज इस पर आस्था है, कल उस पर आस्था है, परसों उस पर आस्था है, यानी कि उनकी आस्था टिक ही नहीं पाती। और याद रखिए कि अगर आस्था टिक नहीं पा रही है तो फिर वो आस्था नहीं है, वो थाली का बैंगन है जो लुढ़क रही है। क्योंकि आस्था जरूरी नहीं है कि आपको परिणाम दे ही, अगर परिणाम नहीं भी दे रही है तो आस्था है। पिता पिता है, माँ माँ है, दादा दादा है, नानी नानी है, वो तो है, चाहे वो कुछ करें या न करें। हमारी शिकायतें हो सकती हैं, हम अपनी शिकायतें उनके सामने रख सकते हैं। अगर हम शिकायतें रख रहे हैं तो वो जो हमारी शिकायतों के कारणों पर हम थोड़ा सा विचार अपने संदर्भ में भी करें कि हम कितने जिम्मेदार हैं उन शिकायतों के लिए, तब तो आगे कोई रास्ता दिखाई दे सकता है, अदरवाइज रास्ता दिखाई नहीं देगा। तो मित्रों, यहां मैं आखिरी में आपको जो यूनान के महान दार्शनिक हुए हैं प्लेटो, बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, प्लेटो का नाम आपने सुना होगा, प्लेटो के शिष्य हुए थे अरस्तु और अरस्तु के शिष्य थे हमारे सिकंदर द ग्रेट। मित्रों, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है, मुझे स्मरण हो रहा है, मैं वो आप लोगों के सामने आखिरी में रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि जब हम आस्था के साथ लड़ते हैं, मतलब आस्था से लड़ाई नहीं करते, जब आस्था को लेकर लड़ते हैं, मतलब वो भी हमारे हाथ में एक होता है, जब हम आस्था के साथ लड़ते हैं तब हमारे पास दुगने हथियार होते हैं, यानी कि हम ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।